महाराष्ट्र नंबर का पैर देखना, पहले पेज का मध्यार्ध चल रहा था। प्रजापिता सूक्ष्म वचन में नहीं हो सकता, वहां रचना नहीं होती है। तो इसी बात पर तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद करते हैं, तो समझाना चाहिए। ब्रह्मा और ब्राह्मण है तो जरूरी इसी सृष्टि पर होंगे ना। ब्रह्मा भी इसी सृष्टि पर होगा और ब्राह्मण भी इसी सृष्टि पर होंगे, है तो सही ना कि नहीं है। जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला तो जरूरी सृष्टि पर क्राइस्ट भी हुआ और क्रिश्चियन भी इसी सृष्टि पर हुए। बुद्ध से बौद्धि, इब्राहिम से इस्लामी, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी निकले। नामी ग्रामी ब्राह्मण कौन से हैं? शास्त्रों में कोई नामी ग्रामी ब्राह्मण है? नहीं है तो जरूर। जो ब्राह्मण शास्त्रों में बहुत नामी ग्रामी गाए जाते हैं, व्हाइट वे में गाए जाते हों या ब्लैक वे में गाए जाते हों, गाए जरूर जाते हैं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे ब्राह्मण भी गाए जाते हैं, और गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र और सप्तऋषि जैसे ब्राह्मण भी गाए जाते हैं, बहुत नामी ग्रामी है। तो कहां कोई क्लैरिफिकेशन दे सकता है कि वो सप्तऋषि कहां है, वो वशिष्ठ और जो विश्वामित्र कहां है? तो मिसाल दिया कि बुद्ध से बौद्ध, इब्राहिम से इस्लामी, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण भी नामी ग्रामी पैदा हुए। ब्रह्मा से पहले पहले नामी ग्रामी कौन पैदा हुए? पहले पहले ये सप्तऋषि तो बाद की बात। पहले पहले नामी ग्रामी ब्राह्मण पैदा हुए सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, चार ब्राह्मण पैदा हुए जो मानसी सृष्टि से पैदा हुए। कहते हैं आदि देव ब्रह्मा, पहला पहला देवता। तमादि देव है, पुरुष है, पुराण है, शास्त्रों में गायन है। तो जब आदि देव का गायन है तो उनका चित्र कौन सा दिया जाता है? आदि देव का चित्र ब्रह्मा का दिया जाता है मंदिरों में क्या? नहीं, शंकर का चित्र दिया जाता है। वहां जाकर के गाते हैं तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण। चित्र जो दिए हुए हैं जैन मंदिरों में वो भी नग्न मूर्तियां, इस बात की प्रमाण। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मेसोपोटामिया या ग्रीस की खुदाइयों में सबसे जास्ती नग्न मूर्तियां मिली है, जो निराकारी स्टेज की प्रमाण है कि परमात्मा निराकार है। वो निराकारी स्टेज में रहने वाला प्रजापिता परमात्मा प्रजापिता के रूप में प्रत्यक्ष होता है संसार में, आदिदेव के रूप में। वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते। ये तो मुरली में ही ये प्राम प्रूफ आ गया। आदिदेव किसे कहेंगे वास्तव में? किसे कहेंगे? और नकली रूप में किसे कहेंगे? मुरली बोल रही है कि वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे, तो आदिदेव किसे किसको कहेंगे? जरूर आदिदेव कोई और है। ब्रह्मा को अगर देवता कहें तो दाढ़ी मूछ क्यों दिखाई? देवताओं को तो दाढ़ी मूछ होती नहीं, दाढ़ी मूछ विकारियों को होती है। मुरली में बोला हुआ है कि ब्रह्मा मृत्युलोक में खत्म हो जाता है। ब्रह्मा की आयु 100 साल मृत्युलोक में पूरी होती है। तो मृत्युलोक में विषय वैतरणी नदी में नरक की दुनिया में देवता होंगे या विकारी होंगे? विकारी मनुष्य होते हैं। तो ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, ये भी रंग है। तो जरूर राइट बात निकालनी पड़े। ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं उनसे पूछना चाहिए ब्रह्मा कहां से आया, ओरिजिन बताओ, तो बता नहीं सकेंगे कि कहां से आया। कह देंगे इसी सृष्टि से आया। अरे कहीं से आया तो ओरिजिन कहीं से तो हुआ, कोई तो उसको जन्म देने वाला हुआ रचयिता। ये किसकी रचना है? उन ब्राह्मणों से पूछो, ब्रह्मा रचना है तो किसकी रचना है? ब्रह्मा साकार है या निराकार? साकार। ब्रह्मा साकार है तो उसका रचयिता कैसा होगा? साकार ही होगा ना। इसलिए मुरली ने प्रश्न कर दिया, निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए? निराकार से तो निराकारी वर्षा मिलेगा और साकार से साकार वर्षा मिलेगा। विश्व की बात सही का या स्वर्ग का वर्षा मिलेगा? स्वर्ग साकार में होता है। तो ये ब्रह्मा किसकी रचना है? ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया? जो चीज क्रिएट की जाती है क्रिएटर के द्वारा, वो चीज पहले नहीं होती है। जैसे घड़ा बनाया कुम्हार ने, तो मिट्टी तो होती है लेकिन घड़ा पहले नहीं होता। तो आत्माएं नहीं क्रिएट की जाती। आत्माओं का रचयिता सुप्रीम सोल बाप नहीं है, वो तो अनादि है। आत्माएं भी अनादि, सुप्रीम सोल बाप भी अनादि। सुप्रीम सोल ज्योतिबिंदु शिव को रचयिता नहीं कहेंगे, क्रिएटर नहीं कहेंगे। वो क्रिएटर तब बनता है जब किसी साकार रूप में प्रवेश करता है। हाँ, तो ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया कब, कोई बता ही नहीं सकता। कोई ब्राह्मण नहीं है जो बता सके कि ब्रह्मा को कब क्रिएट किया, क्योंकि ब्रह्मा से पहले कोई सृष्टि पर होता ही नहीं। शास्त्रों में इस बात का गायन ही नहीं है। पहले कौन हुआ? ब्रह्म। तो जानते ही नहीं है तो बतावेंगे क्या? ये भी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा का जो रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं, ये है ही वह जो आत्मा कृष्ण प्रिंस बना था। कब बना था? शिव बाबा का रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं, ये वही आत्मा है जो कृष्ण प्रिंस बना था। कब बना था? सत्ययुग में। उसका गायन है शास्त्रों में। सत्ययुग के कृष्ण का, कंस का गायन शास्त्रों में है। सत्ययुग वाले कृष्ण का तो शास्त्रों में गायन ही नहीं है। गायन किसका है? गायन तो उस कृष्ण का है जिसके साथ कांसी जरा सिंधी दिखाए जाते हैं। 84 जन्मों के बाद ये जाकर के ब्रह्मा आकर के बने। जन्म पत्री का नाम तो इनका अपना अलग होगा ना, क्योंकि ये तो मनुष्य है ना। फिर इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। जब परमात्मा प्रवेश होते हैं तो नाम बदल जाता है। मेरा नाम शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। तो ये भी बच्चे जानते हैं, वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है। पहले ब्रह्मा, फिर पुरुषार्थ पूरा होता है तो ब्रह्मा सो एक सेकंड में विष्णु, नारायण बनते हैं। ब्रह्मा सो नारायण बनते हैं। तो नर से नारायण बनने का गायन है या नर से प्रिंस बनने का गायन है? नर से नारायण बनने का गायन है। तो जरूर वो ब्रह्मा की सोल किसी नर तन में प्रवेश करती है और प्रवेश करके फिर नर से नारायण उसी तन से जिसमें प्रवेश किया उसके द्वारा नारायण बनती है। तो जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर दिखाए जाते हैं, भव्य बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, उसमें बाजू में विष्णु का चित्र भी होता है। विष्णु देवता का भी एक कोठरी में चित्र दिखाते हैं। उस विष्णु को कहते हैं नर नारायण का मंदिर, और फिर लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर भी दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही युगल रूप जोड़ी है जिसमें राम सीता वाली आत्माएं भी कार्य करती है, तो राधा कृष्ण की भी सोल कार्य करती है और उन दोनों की यादगार दो रूप में दिखाई गई है, अलग अलग। तो 84 जन्मों के अंत में भी ये साधारण रथ है ना। ये सब आत्माओं की रथ है। शरीर अकाल मूर्त का बोलता चलता तख्त है। सतगुरु अकाल मूर्त कहते हैं सिख लोग। उन्होंने अमृतसर में तख्त बनाया हुआ है, अकाल तख्त, अकाल मूर्त का। मूर्त कैसी? मूर्त माना साकार। मूर्त कैसी? अकाल। अकाल का मतलब क्या है? जिसको काल खा न सके। तो अकाल मूर्त का जो तख्त है, जिसको काल खा न सके, जो सतगुरु अकाल कहा जाता है, तो क्या परमात्मा जिस तन में प्रवेश करेगा वो रथ अकाल मूर्त होते हुए भी उसको काल खा जाएगा? अरे वो तो सारी दुनिया को खाने के लिए आया हुआ है। सारी दुनिया खा लेगा लेकिन उसको कोई खा नहीं सकेगा। वो कालों का काल महाकाल गाया जाता है, वो अविनाशी रथ गाया जाता है, भाग्यशाली रथ गाया जाता है। भाग्यशाली कहेगा जब हाथ पे होकर के शरीर खत्म हो जाए। मुरली में तो बोला हुआ है कि योगियों का हाथ पे नहीं हो सकता। ये वाक्य इस बात को जाहिर करता है कि ब्रह्मा का वो रूप जो भारतीय परंपरा में पूजा नहीं जाता, मंदिर नहीं बनाए जाते, मूर्तियां नहीं बनाई जाती, वो संपन्न योगी का रूप नहीं है। संपन्न योगी जिसे योगीश्वर कहते हैं, योगियों का ईश्वर, वो स्वरूप तो कोई दूसरा ही है। सिख लोगों ने फिर वो तख्त बनाए दिया है लकड़ी का। लकड़ी का तख्त क्यों बनाए दिया है? जैसे हिंदुओं ने पत्थर का लिंग बनाए दिया है, वैसे उन्होंने लकड़ी का तख्त बनाए दिया है। क्योंकि लिंग जो होता है वो तो बड़ा होता है। सोमनाथ के मंदिर में बिंदु बीच में था और लाल पत्थर का लिंग था, तो लिंग किसकी यादगार और बिंदु किसकी यादगार? वो हीरा किसकी यादगार? हीरा सुप्रीम सोच ज्योति बिंदु की यादगार। और जो लिंग है वो साकार शरीर धारी की यादगार, जो निराकारी स्टेज में रहने वाला है। जब निराकारी स्टेज में आत्मा स्थिर होती है तो इंद्रियों का भान हाथ पांव नाक आंख कान नहीं होते। जैसे जगन्नाथ के मंदिर में, श्रीनाथ के मंदिर में लिंग दिखाते हैं लकड़ी का, उसमें नाक आंख कान पहले नहीं होते, ये तो पूजा करने के लिए बाद में बना दिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि निराकार जो ज्योतिबिंदु सुप्रीम सोल है, वो जिस साकार स्वरूप में प्रवेश करता है वो निराकारी स्टेज वाला होता है। शिव बाबा निराकार है ये कहने से हम उसका अर्थ गलत लगा लेते हैं। वो निराकार है तो वो बिंदु है, जैसे कुछ है ही नहीं दुनिया में। चाहे जो कुछ काम करते रहो, उलट करो सीधा करो, हमको दुनिया में पकड़ने वाला तो कोई साकार है ही नहीं। इसलिए अगत वाणी में बाबा ने बोला हुआ अभी तो फिर भी चल जाता है, क्योंकि कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है। ऐसा क्यों बोला? जरूर इससे इशारा मिल गया ब्राह्मणों को, देवताओं को, ब्राह्मण से देवता बनने वाली आत्माओं को, कि आगे चल करके कोई हिसाब किताब लेने वाला बाप का स्वरूप भी धर्मराज के रूप में सामने आवेगा, जो एक एक पाई पाई पैसे पैसे का हिसाब लेगा ब्राह्मण। तो सिख लोगों ने वो लकड़ी का तख्त बनाई दिया है। लकड़ी का तख्त क्यों बनाई दिया? हिंदुओं ने वो पत्थर का लिंग क्यों बनाए दिया? जिसमें जिस शरीर में प्रवेश करता है वो पत्थर का लिंग, इसकी यादगार क्यों बनाई? जरूर पत्थर बुद्धि होगा। लकड़ी का तख्त बनाया है तो जरूर लकड़ बुद्धि होगा, जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं। तो उसको अकाल तख्त कह दिया है, लकड़ी का बनाए दिया है। ये तो अकाल तख्त सब है। इस दुनिया में जितनी भी मनुष्य आत्मा है सब कब्र दाखिल हुई पड़ी, लास्ट जन्म में आकर के सब सब कब्र दाखिल हो जाते हैं, सब लक्कड़ बुद्धि हो जाते हैं। ऐसा कोई नहीं रहता जो लक्कड़ बुद्धि न बने। आत्माएं सब अकाल मूर्त हैं, बिंदु रूप में तो आत्माएं सब कैसी हैं? अकाल मूर्त। आत्मा को तो कोई काल नहीं खा सकता, फिर काल किसको खाता है? शरीर को खाता है। तो अकाल मूर्त का जो गायन है, मूर्त मूर्त माने साकार शरीर से, तो ये गायन इसीलिए है कि जिस साकार शरीर में परमात्मा प्रवेश करता है, भले लक्कड़ बुद्धि में प्रवेश करता है, लेकिन वो पत्थर से पारसनाथ बनता है। बच्चे भी पारसनाथ के बच्चे क्या बनेंगे? पारस पारसनाथ नहीं बनेंगे। ऊंचते ऊंच भगवान को ये रथ तो जरूर चाहिए, क्योंकि रथ में प्रवेश हो बैठ नॉलेज देते हैं, नहीं तो नॉलेज कैसे सुनावेंगे? उनको ही नॉलेज फुल कहा जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज देते हैं। रचयिता कौन है और रचना कौन है जिसके आदि मध्यंत की नॉलेज दी जाती है? नॉलेज देने वाला तो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु आत्मा, वो तो नॉलेज देने वाला है, लेकिन नॉलेज किसकी देते हैं? ज्योति बिंदु की नॉलेज देते हैं क्या? ज्योति बिंदु को रचयिता नहीं कहा जाता, क्रिएटर नहीं कहा जाता। क्रिएटर तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, वही सृष्टि का आदि पिता है, पिता को ही रचयिता कहा जाता है। तो रचयिता की नॉलेज देते हैं। माना ऐसे सृष्टि रूपी साकार वृक्ष का बीज भी कैसा होगा? साकार होगा। परमधाम में आत्माओं को जो झाड़ है उसका बीज तो परमात्मा शिव ज्योति बिंदु है, लेकिन साकार सृष्टि पर साकार मनुष्यों का जो बीज है वो जरूर कोई साकार मनुष्य ही होगा, जो ऑलराउंड पार्टधारी होता है। तो उस रचयिता और उसकी जो रचना है फर्स्ट क्लास, उस रचना के आदि मध्य की अंत की नॉलेज आकर के बाप देते हैं। तो अब बताओ कि रचयिता तो मालूम पड़ा, चलो इस सारी सृष्टि का वो मनुष्य बीज रूप में वो पिता जो सारी सृष्टि का पिता है, वो तो ठीक मालूम पड़ गया रचयिता। फिर रचना कौन है? वो तो ढेर सारे हो गए। पहली पहली रचना कौन सी है? राधे कृष्ण, वो तो दो हो गए। पहली पहली बताई, कृष्ण बच्चा। अच्छा कृष्ण बच्चा रचना है, ये तो बात ठीक है। बाप का बच्चा ही उसकी रचना होती है, फर्स्ट क्लास रचना। लेकिन बच्चे से भी पहले कौन सी रचना होती है? स्त्री रचना होती है, लेकिन स्त्री को वर्षा नहीं मिलता है, स्त्री को तो बांधा जाता है बच्चों की सेवा करने के लिए, परिवार का पोषण करने के लिए, श्रेष्ठ रचना रचने के लिए। तो श्रेष्ठ रचना वास्तव में कृष्ण हुई। तो परमात्मा शिव वो तो हुआ बाप, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, तो जरूर हेवन रचता होगा साकार में। और उस हेवन का मालिक बनाता है कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण बच्चा बनता है। लेकिन दोनों के बीच में जो कड़ी है वो है माता, जगत अम्बा। तो मुरली में बोला हुआ है, वास्तव में तुम्हारी बड़ी मम्मी ये जगदम्बा है, ये ब्रह्मा जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। तो ये पख क्यों लगा दी? परंतु की लेकिन की ये पख क्यों लगाई? जब तन पुरुष का है तो वास्तव में ये जगत की अम्बा इस तन से नहीं है, क्योंकि जगदम्बा का तो रूप भारतवर्ष में पूजा जाता है, उसका जो चित्र बना करके पूजन होता है, ब्रह्मा के चित्र की पूजा नहीं होती है, तो जरूर वो स्त्री रूप में जगत अम्बा के रूप में सारी सृष्टि में प्रत्यक्ष होने वाली अम्बा कोई दूसरी है। जो यज्ञ के आदि वाली माता थी वही वास्तव में जगदम्बा है, जो आदि में थी वही अंत में फिर प्रत्यक्ष होती है। तो रचना के आदि मध्य अंत की नाली वैसे थी, नाली फूल का अर्थ कोई अंतर्यामी व जानी जाना अर्थ है नहीं, क्या नाली फूल का मतलब ये नहीं कि वो अंतर्यामी है, एक एक की घट की जानता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है वो जानते ही होंगे, नहीं, अंतर्यामी का ये मतलब नहीं है। मतलब क्या है फिर? जानी जानन हार का अर्थ दूसरा है और सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है। सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा क्या है? जानी जानन का हार का अर्थ दूसरा क्या है? हाँ, वो सृष्टि के आदि मध्यंत को जानता है। मनुष्य तो सबको मिलाकर जो आता है सो कहते जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं, सब ब्राह्मण, कितने ब्राह्मण होंगे हैं? हमारा कुल सबसे ऊंचे है, हम किस कुल के हैं? ब्राह्मण कुल के, ब्राह्मण सो देवता, देवता कुल के हैं। देवताओं के कितने जन्म होते हैं? 84 जन्म। अच्छा, सेकंड नारायण के कितने जन्म होंगे? 83 जन्म होंगे, तो वो क्या देवता नहीं होगा? देवताओं की लिस्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि कम जन्म लेने वाली आत्मा है, जरूर उन्होंने पूरी पढ़ाई परमात्मा बाप से नहीं पढ़ी, परमात्मा बाप बाप बनकर जब प्रत्यक्ष होता है और यूनिवर्सिटी की ऊंची से ऊंची पढ़ाई पढ़ाता है, तब वो आत्मा मरहूम हो जाती है, उस नाली से दूर हो जाती है। तो हमारा कुल सबसे ऊंचा है, वो लोग तो देवताओं को ऊंच रखते हैं क्योंकि सचिव आदि में देवता हुए हैं ऐसे समझते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद तो ब्राह्मण होते हैं, ये कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के, उनको पता भी कैसे पड़ेगा? जबकि ब्रह्मा को वो सूक्ष्म बतन में समझ लेते हैं तो उनको पता कैसे पड़ेगा? उनको पता कब पड़े हैं? एक मुरली में बाबा ने प्रश्न पूछा है, उन ब्राह्मणों से जाकर के पूछो कि तुम अपने को ब्राह्मण कहते हो ब्रह्मा मुख वंशावली, तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? अब ऐसे ऐसे महावाक्य छापे नहीं जाते हैं भले, क्योंकि वो अब लागू नहीं होते हैं। अगर उनको छापा जाएगा तो फिर खुद को कोई पकड़ लेगा कि बाबा ने तो ऐसे बोला हुआ है कि उन ब्राह्मणों से पूछो। तो जब उन ब्राह्मणों से पूछेंगे तो कोई हमसे भी पूछ बैठेगा कि तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है, कहेंगे गुलजार दादी। तो ब्रह्मा का नाम कोई गुलजार दादी नहीं रखा है, मुरली में तो बोला हुआ मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। ऐसे नहीं कि ये ब्रह्मा का तन चला जाएगा तो कार्य संपन्न नहीं होगा, ये भले ही ब्रह्मा चला जावे तो भी ये यज्ञ का कार्य तो चलता रहेगा। मैं तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ जाएंगे, साथ खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, तो साथ साथ का गायन है। तो वो चला गया तो वास्तव में जब वो ब्रह्मा ही तुम्हारा चला गया तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कहाँ से आए? ब्रह्मा मुखवंशावली हो तो जरूर यहाँ होना चाहिए है? हाँ, वो जिस माने ब्राह्मण अलग है तो पूजा करते हैं और धामा खाते हैं, जो अलग ब्राह्मण होते हैं वो क्या करते हैं, जड़ चित्रों की पूजा करेंगे और धामा खाएंगे, बस खाने पीने की बातों में उनको रस है। दूसरे भी कोई आएंगे तो उनकी आवभगत करेंगे तो खाने पीने की बातें, खाने पीने की चीजें रख देंगे उनके सामने, छत्तीस प्रकार के भोजन, हाँ, और उनको खुश करेंगे, क्योंकि उनके पास ज्ञान का धन तो है। तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो, क्या कहा, तुम कोई धामा आदि नहीं खाते हो, तुम्हारी कोई रग 36 प्रकार के भोगों में नहीं लगी हुई है। ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रीति समझना पड़ता है। ये राज सिवाय राजयोगी ब्राह्मणों के और कोई जान नहीं सकता। बोलो, और बातों को छोड़, बाप जिससे पतित से पावन बनना है पहले उनको तो याद करो। बुलाते हैं तब ये नहीं कहते हे पतित पावन आओ हमको आकर के ज्ञान सुनाओ, क्या कहते हैं, पतित पावन जब टाइटल लगाया हुआ है, टाइटल लगा करके बुला रहे हैं तो किस लिए बुलाते हैं, ज्ञान सुनाने के लिए बुलाते हैं, नहीं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। ज्ञान तो एक मीडिया है, साधन है, साध्य नहीं है। तो जिससे पतित से पावन बनना है पहले उनको तो याद करो। तो किससे बनना है, पतित से पावन किससे बनना है, अरे पतित किससे बने, चलो इसका उल्टा समझ लो तो सीधा भी समझ में आ जाएगा। पतित किसके संग के रंग में आने से बने, रावण कौन, रावण का भी तो चित्र बनाते हैं, चित्र बनाते हैं तो चरित्र करने वाला भी कोई हुआ होगा, लेकिन वो समझ लेते हैं कोई दस सिर का आदमी हुआ होगा। दस सिर इकट्ठे होने का मतलब है कि कोई दस व्यक्तित्व है, 100% कोई कामी व्यक्तित्व है, कोई 100% लोभी कामी क्रोधी अहंकारी व्यक्तित्व है, जिनकी यादगार ये चित्रों के रूप में दिखाई गई है। रावण के चित्र, चरित्र करने वाला नहीं हुआ तो चित्र कैसे बना दिया, नंबरवार ही तो विकारी होंगे कि एक जैसे सब विकारी होंगे, एक जैसे सब विकारी हो सकते हैं क्या, नहीं, तो 100% भी तो कोई विकारी होंगे। अरे तो जो 100% विकारी हुए, जिन विकारियों में ऊपर से आने वाली पतित आत्माओं ने प्रवेश, वो पावन आत्माओं ने प्रवेश किया, क्योंकि ऊपर से आने वाली जो सोल है इब्राहिम बुद्ध कैस्ट की, वो किस में प्रवेश करती है, पतित शरीरधारियों में ही प्रवेश करती है, वो पहले पतित बन जाते हैं। देवी देवता सनातन धर्म की 84 जन्म लेने वाली आत्माओं के मुकाबले वो पहले पतित बनते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी, पावन पूरे नहीं बने, 16 कला संपन्न, इसलिए वो नीचे गिर जाते हैं पहले। तो ऊपर से आने वाले धर्म पिता उन्हीं का आधार ले लेते हैं, कमजोर आत्माओं का, उनको कन्वर्ट करके अपने देशों में ले जाते हैं। तो पतित पावन का गायन है, क्योंकि वो आकर के पतितों को पावन बनाता है, तो पतितों को पावन संघ के रंग से ही बनाएगा कि ज्ञान सुना करके चला जाएगा और हम पतित से पावन बनते रहेंगे। जब पतित बने हैं तो अनेक धर्म पिताएं जो दूसरे दूसरे धर्म के आए उनके संघ के रंग में आकर के हम भारतवासी पतित बने, तो पावन कैसे बनेंगे, अनेकों के संसर्ग संपर्क में आने से हम पतित बने संघ का रंग लगने से, तो पावन कैसे बनेंगे। एक जो ऊंचे से ऊंचा है उन धर्म पिताओं का भी बाप है, बापों का भी बाप है और पतियों का भी पति है, उसके संग के रंग से हम पावन बनेंगे, वरना पावन बनने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये कोई कहे कि हमने ज्ञान सुन लिया तो ज्ञान से हम पावन बन जावेंगे, नहीं, पतित से पावन वो जरूर चाहिए, पतित पावन बाप ही इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, कोई मनुष्य मात्र पतित से पावन नहीं बना सकता। तो पहले उनको तो याद करो, फिर ये बातें भी समझ जाएंगे। थोड़ी बात में संशय पड़ने से बाप को ही छोड़ देते हैं। पहली मुख्य बात है अलख और बाप, मुख्य बात है अलख जिसको कहते हैं बाप। अलख और बे दो अक्षर हैं उर्दू के, नुक्ता या बिंदी अलग चीज होती है, बिंदु सैकड़ों लगा दो वैल्यू कुछ भी नहीं होगी जब तक अंक नहीं लगाएंगे। अंक के बगैर बिंदु की कोई वैल्यू नहीं, तो वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु अलफ का आधार लेता है। अलफ माना पहला अक्षर, बिंदु अलग चीज, तो उस अलफ को पहचानो। ये नहीं कहा बिंदु को पहचानो, बिंदु को कैसे पहचानेंगे, बिंदु को पहचानने की बात कैसे होगी। बिंदी बिंदी तो सब आत्मा एक जैसी, कीट पशु पक्षी पतंगों की आत्माएं भी बिंदु, 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं भी बिंदु। अब आप कैसे पहचानेंगे कि हम कौन से बिंदु को याद करें, कोई हिसाब है हम कौन से बिंदु को याद करते हैं। तो बिंदु को याद करना वो कोई ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करना नहीं हुआ। जब कहते हैं ऊंचे से ऊंचा बाप, तो जरूर वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु किसी शरीर में प्रवेश करके ऊंचे से ऊंचा कार्य करके जाता है। ऐसे तो सब धर्म पिता अपनी नॉलेज दे करके चले गए, दुनिया तो फिर भी नीचे गिरती चली गई। जैसे ब्रह्मा के अंदर नॉलेज दी और फिर भी ब्राह्मणों की दुनिया ऊंची उठी है नीचे गिरी है। आपत्ता इसने गिरता जा रहा है या उठता जा रहा है, इसने तो समाप्त होता जा रहा है। तो सचिव में तो इसने ही उनकी दुनिया होगी कि लतसंग की दुनिया होगी। अरे सत्संग माना सत्य का संग, सत्य का संग सिवाय सत्य बाप के और कोई कर ही नहीं सकता, मनुष्य मात्र सत्संग नहीं कर सकता। वो तो लातें लगाएंगे धक्के देंगे, सत्संग तो एक सत्य सिवाय बाप के और कोई ऐसा है ही नहीं सृष्टि पर जिसने सत्संग किया हो। तो बोला कि पहली मुख्य बात है अलस और बे। अलस माने अल्लाह, ऊंचे तो ऊंचा पाठ बजाने वाला, अल्लाह को याद करो। जब अल्लाह को कहते हैं तो मुसलमान भी समझ लेते हैं कोई निराकार है।
तो पहली मुख्य बात है अलस और बे की। अलस माना रचयिता बाप और बे माना रचना, फर्स्ट रचना। तो रचयिता बाप हुआ राम बाप और फर्स्ट रचना हुई कृष्ण बच्चा। सचयुग में कृष्ण बच्चा होगा, लेकिन सचयुग का जो फर्स्ट प्रिंस है उसको जन्म देने वाला भी तो कोई होगा कि विकारियों से जन्म लेगा। उसके माँ बाप निर्विकारी होंगे या विकारी होंगे, जरूर निर्विकारी होंगे। निर्विकारी से ही निर्विकारी रचना की पैदाइश हो सकती है, रचना हो सकती है। विकारी निर्विकारी रचना की पैदाइश नहीं कर सकता। रचयिता हमेशा रचना से पावरफुल होता है, ऐसे नहीं कि रचना 16 कला संपूर्ण हो और रचयिता कलाहीन हो। नहीं, कृष्ण को चित्रों में दिया हुआ है, लिखा हुआ है पुराने चित्रों में। महाराज कुमार श्री कृष्ण, महाराज कुमारी श्री राधे, तो किसके कुमार हुए, जरूर कोई महाराजा पहले ही बन चुकी है आत्मा, जिसने डायरेक्ट सुप्रीम सोल बाप से योग बल के आधार पर विश्व की बाप से प्राप्त की है। तो डायरेक्ट बाप से पाने वाली कोई रचना और है, और फिर उन देवताओं से प्राप्त करने वाला कृष्ण हुआ। कृष्ण को जो प्राप्ति होगी रह जाएगी सचयुग में, वो डायरेक्ट परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल से नहीं होगी। डायरेक्ट जो प्राप्त करेंगे वो इसी जीवन में इसी शरीर से अपनी कंचन काया बनाएंगे, माने प्रकृति के 5 तत्वों के ऊपर भी कंट्रोल करेंगे। इसलिए अग्रसवा ने बोला जब तक प्रकृति के 5 तत्वों को जीता नहीं है तब तक विश्व परिवर्तन नहीं हो सकता। विश्व परिवर्तन तब कहेंगे जब प्रकृति के 5 तत्व भी चेंज हो जाए। तो पहले दुनिया के 5 तत्व चेंज होंगे या पहले अपने शरीर के 5 तत्व चेंज होंगे। आत्मा के शरीर में पहले क्या है, वो आत्मा के संसर्ग में संपर्क में पहली चीज क्या है, बाहर की दुनिया के 5 तत्व या अपने शरीर के 5 तत्व। पहले तो शरीर ये कंचन गाया बने, लेकिन ये शरीर तब तक कंचन काया नहीं बन सकता जब तक ये 500 करोड़ की विकारी दुनिया मौजूद है। हम एक तरफ पुरुषार्थ करते हैं, 500 करोड़ की विकारी दुनिया के वाइब्रेशन हुजूम के रूप में संगठित रूप में हमारे पुरुषार्थ को चौपट कर देते। तो कब बनेगा निर्विकारी शरीर, निरोगी कंचन काया? ये बनेगा ही तब जब ये 500 करोड़ की दुनिया जो विरोधी वाइब्रेशन फैलाने वाली है, ईश्वर के वर खिलाफ वाइब्रेशन फैलाने वाली है, ईश्वरीय मत के वर खिलाफ आचरण करने वाली है, वो ध्वंस हो जाए। तो क्या 500 करोड़ की दुनिया उस परमात्मा बाप को पहचानेगी? नहीं पहचानेगी तो, लेकिन जब तक पहचानेगी तब तक टू लेट हो जाएंगे। फिर उस समय वो पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे अपने को सुधारने का, इसलिए उनको परमधाम वापस जाना पड़ेगा। तो इसलिए वाणी में बोला हुआ है कि तुम बच्चों की आत्मा पावरफुल होती जाएगी और ये शरीर सड़ते जाएंगे। कब तक सड़ते जाएंगे? जब तक इस 500 करोड़ की दुनिया का विनाश नहीं होता है तब तक ये शरीर कितना भी कोशिश करो लेकिन कुछ न कुछ इसमें असर हुजूम का जरूर पड़ेगा। ये आंखें देवताओं के समान कमल नयन हो जाएं, तो नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को कभी उल्टा नहीं उठाना है कि हम राजयोगी बन गए तो फिर कंचन काया किसकी बनी। कंचन काया यहाँ इस सृष्टि पर नहीं बनेगी। कंचन काया तो बनेगी ही तब जब इस प्रकृति को पल्यूट करने वाला एक भी मनुष्य आत्मा मनुष्य नहीं रहेगा इस सृष्टि पर। अभी प्रकृति का पॉल्यूशन हो रहा है। कृति, कृति माने रचना, बारी और प्रमाण प्रकृष्ट रचना, जो परमात्मा की पहली प्रकृष्ट रचना है वो वास्तव में है ही माता। लेकिन विदेशी आने से, विदेशीयता आने से उस प्रकृति माता के पोल्यूशन का कोई ध्यान नहीं रखते कि ये पोल्यूट नहीं करना है। प्रकृति माना पांच तत्व तो जड़ होते हैं, जैसे दुनिया में ये जड़ चीजें हमें दिखाई पड़ रही हैं, सितारे हैं, चंद्रमा है, पृथ्वी है, समुद्र है, ये जड़ वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन जैसे ये जड़ वस्तुएं हैं इनके चैतन्य रूपी भी कोई है। पांच तत्व तो जड़ हैं, उनके चैतन्य रूपी भी कोई है, जो शास्त्रों में दिखाया गया अग्नि देवता, वायु देवता, देवताएं रावण की पार्टी से बंधे हुए थे, रावण ने उनको बंधन में डाल रखा था अपनी सेवा करने के लिए। तो रावण कोई दूसरा नहीं है। आज के बुद्धिवादी मनुष्य वो प्रकृति को, हवा को, पानी को, अग्नि को बांधे हुए हैं, बांधने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सेवा ले रहे हैं। ये फैन क्या है? ये भी तो प्रकृति का साधन है, प्रकृति को बांधा हुआ है ना। खूब गर्मी पड़ रही है कटाके की और फिर भी उसको बांध लिया, वो हमको हवा देता है, सुख देता है। तो ये साधन है, ये है साइंस के साधन। ये प्रकृति सात्विक रूप में नहीं है, प्रकृति को हमें सात्विक बनाना है, जो इन बुद्धिवादी साधनों की हमें दरकार ही नहीं पड़ेगी। जब प्रकृति सत्वप्रधान बन जाएगी तो मौसम कैसा हो जाएगा? हाँ, सदा बाहर मौसम। उस सदा बाहर मौसम में हमको ये दीवाने बनाने की जरूरत दरकार नहीं पड़ेगी। ये दीवाने कब बनाई जाती? जब सर्दी गर्मी बरसात हो रही है तो उससे सुरक्षा के लिए दीवाने बनाई जाती। देह अभिमान ज्यादा है तो देह अभिमान आता है उसको छुपाने के लिए दीवाने बनाई जाती है, कपड़े पहने जाते हैं। उस उन्मुक्त वातावरण में इन सब चीजों की जरूरत नहीं होगी। तो पहले अलफ और बे वो मुख्य बात है। बाप कहते हैं मां एकम याद करो, ये क्या बात है? अभी कहते हैं अलफ और बे मुख्य बात है, अब कहते हैं मां एकम याद करो, मुझे एक को याद करो। अरे एक को याद करें या दो को याद करें? दो मुख्य को याद करें है? एक को याद करो, फिर तो दो बातें क्यों हो गई? इसीलिए तो फिर तथाकथित ब्राह्मण कहते हैं कि बाबा की तो लहर है। कभी खेत की बात करते हैं, कभी खलिहान की बात करते हैं। मुरली में नहीं ऐसा होता है, سمجھنے والوں کی عقل ایسی ہے, سمجھانے والوں کی عقل ایسی ہے. پرماتما گاڈ از ون کہا جاتا ہے, گاڈ از ون تو اس کی بات بھی ایک ہی ہوگی, ایک ہی سچے ارتھ دینے والی ہوگی, باقی جتنے بھی ارتھ ہیں وہ سب اسکتے ہوں گے. تو پرماتما باپ جب یہ کہتے ہیں کہ الف اور بے کو یاد کرو, تو ضرور وہ بے مانا بادشاہ ستیو کا بننے والا کرشن کی سول اور وہ الف پرجاپتا کی سول دونوں ایک ہی شریر میں سمائے ہوئے ہوں گے. تو جب دونوں ہی سول ایک ہی شریر میں ہوئی تو ایک ہوا یا دو ہوئے؟ ایک ہوا نا. باپ اور ورثے کو یاد کرو اور گھر کو یاد کرو. ارے ابھی کہتے ہو ماں کم یاد کرو, پھر کہتے ہو باپ کو یاد کرو, ورثے کو یاد کرو, پرم دھام بدھی اوپر لے جاؤ. تو یہ تین تین دو دو باتیں کیوں ہو گئی کہ گھڑی میں کہنا سڑک کو یاد کرو, گھڑی میں کہنا گھر کو یاد کرو, پھر کہنا کہ میرے کو یاد کرو, الگ کو یاد کرو, بے کو یاد کرو؟ ایک ہی بات بولو نا. بات تو ایک ہی بول رہے ہیں لیکن پرماتما کے اس بھوشیہ میں پرتکش ہونے والے سوروپ کو نہ پہچان پانے کے کارن ان کا ارتھ صحیح نہیں لگا پاتے. مام ایکم کا مطلب ہی ہے جو مام ایکم ساکار سوروپ پرماتما کا ہے سچی پر نراکاری اسٹیج والا, اس نراکاری اسٹیج والے سوروپ کو یاد کرنا مانا اس میں دنیا کے سب سکھ سمائے ہوئے. پانا تھا سو پا لیا, اب کچھ پانو نہ. تو جب سب کچھ مل گیا تو سکھ بھی ضرور مل گیا, سوگ بھی ضرور مل گیا. جب سرو سمبندھوں کی باسنا ایک کے اندر ملے گی تو کون سا سکھ ایسا رہ گیا جو نہیں ملا؟ جس میں پرماتما پرویش کر کے بیٹھا ہوا ہے تو پرماتما کا گھر نہیں ہوا کیا؟ وہ برہما اور برہما نہیں ہوا کیا؟ برہما مانا رہنے کا استھان اور برہما مانا, برہما مانا بھی رہنے کا استھان, کون رہتا ہے اس میں؟ ارے برہما میں بھی 500 کروڑ منشیا آتمائیں رہتی ہیں, نہیں تو نکلی کہاں سے ساری سچی؟ کہاں سے پیدا ہوئی؟ برہما کی بدھی روپی پیٹ سے. ماتا پتا سے ساری دنیا کا جنم ہوتا ہے, تو ماتا پتا ہی بچوں کا گھر ہو گیا. یہ چار دیوالی یہ کوئی گھر نہیں ہے, یہ پرم دھام جو اوپر والا ہے وہ کوئی گھر نہیں ہے. ورتمان سمے ہم بچوں کا گھر کون سا ہے؟ جو باپ کا دل تخت ہے وہی ہمارا, وہی ہمارا گھر ہے. تو گھر کو یاد کرو, چاہے الف کو یاد کرو, چاہے دے کو یاد کرو, چاہے سور کو یاد کرو, بات ایک ہی ہو جاتی ہے. جو باپ ہے وہی ہمارا ورثہ ہے. ہمیں معلوم پڑ گیا کہ نرسے نارائن بننے والا جو ویکتتو ہے اسی میں پرماتما پرویش کر کے سچی کو پریورتن کرتا ہے. تو جو نارائن ہے وہی تو ہمارا ورثہ ہے, نارائن میں ہی پرماتما نواس کرتا ہے. نار مانا جل اور این مانا گھر. جان جل ہی جس کا گھر ہے وہ جان کا اگر باپ ہی ہمارا باپ بھی ہے تو ہمارا ورثہ بھی ہے. وہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا, اور ساری دنیا مل جائے, ساری دنیا ہمارے فیور میں ہو جائے اور باپ سے ہم وپریت بدھی ہو جائیں تو کچھ بھی نہیں. تو بچے تھوڑی بات میں سنشا پڑھنے سے باپ کو ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو بولو اور باتیں چھوڑ دو. جسے پتت سے پاور بننا ہے ان کو یاد کرو. باپ کہتے ہیں مامے کم یاد کرو, میں ضرور کتنے تو آؤں گا نا. مام ایکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے ایک بندو کو یاد کرو. تو پتہ کیسے پڑے گا کہ وہ بندو کون سی بندو ہے؟ ارے بندو سب ایک جیسے, تو پتہ کیسے پڑے گا؟ کہیں گے وہ پرم نام میں جو سب سے اوپر بندی ہے وہ ہمارا باپ ہے, ہم اس کو یاد کرتے ہیں. ارے بدھی جو ہے کبھی کبھی تو اس دھرنی سے اوپر ہی نہیں اٹھ پاتی ہے اور کہتے ہیں ہم سب سے اوپر والے کو یاد کرتے ہیں. بدھی کی حالت یہ ہے کہ بدھی اپرام ہو ہی نہیں پاتی, اس شریر سے ڈیٹیچ ہی نہیں ہو پاتی اور کہتے ہیں ہم سب سے اوپر والے کو یاد کرتے ہیں بندو کو. تو وہ بندو تو اوپر ہے ہی نہیں ابھی. بندو تو کہاں آیا ہوا ہے؟ وہ سپریم سول جوتی بندو تو آیا ہوا ہے پتتوں کو پاون بنانے کے لیے نیچے, جو ڈوبے ہوئے پڑے ہیں پیچھے بہترین ندی میں. کوئی ڈوب جاتا ہے تو اس کو نکالنے والا کیا اوپر اڑتا رہتا ہے کیا؟ یہاں جو فیکٹری جہاں کہیں بھی سچی پر لگتی ہے फैक्ट्री लगती है तो उस फैक्ट्री में जो पतितों को उठाने वाला होगा वो ऊपर उड़ेगा या डुबकी लगा के नीचे जाएगा? वो तो डुबकी लगाएगा, नीचे उसको जाना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं है कि वो कोई ऊपर बैठा हुआ है। मैं जरूर किसी में तो आऊंगा ना, तो किसमें आऊंगा? पतितों को पावन बनाना है तो किसमें आऊंगा? जरूर पतितम कामी कांटे में ही आना पड़े। बड़े से बड़े कामी कांटे में आकर मैं उनको बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ, किंग फ्लावर। सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? कमल का फूल। तो ये बोला हुआ है कि मैं बड़े से बड़े कामी कांटे में आता हूँ। ऐसे नहीं कि कामी कांटे में आया और आने मात्र से ही वो फूल बन गए, फूल बन गया तो जाओ। नहीं, नियम बना हुआ है, एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। तो जब तक विष्णु का रूप प्रत्यक्ष न हो संसार में, तब तक परमात्मा बाप उस पतितम कामी कांटे से छोड़ करके बाहर नहीं जा सकता। उसको पांच जरूर बजाना है। तो मैं किसमें आऊंगा तो जरूर ना, उनका नाम भी चाहिए जिनमें मैं आऊं, पतितों को पावन बनाऊं, उनका नाम भी चाहिए। उनको आकर के रचता हूं। ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अकल चाहिए। प्यादे घोड़े सवार जो होते हैं वो तो बुझ पड़ते हैं। भारतीयों की बात नहीं गई, जो प्यादे होंगे और घोड़े सवार होंगे, घड़ी में एकदम आगे और घड़ी में एकदम पीछे, वो तो फिर मुझे पढ़ते हैं। अवस्था अनुसार समझाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रखते हैं तो जरूर ब्राह्मण चाहिए ना, ब्राह्मण चाहिए तो ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए। जिससे ब्राह्मण बने, ब्राह्मण लोग भी कहते हैं हम ब्रह्मा की संतान है, समझते हैं परंपरा से हमारा कुल चला आता है। वो ब्राह्मण क्या समझते हैं कि ब्रह्मा की औलाद दीदी दादी दादा और उनकी औलाद उनसे पैदा हुए हम, माना ब्राह्मण मुखवंशावली हुए या ब्रह्मा मुखवंशावली हुए? ब्राह्मण मुखवंशावली हुए ना, फिर ब्रह्मा मुखवंशावली क्यों कहते हो? तो समझते हैं परंपरा से हमारा कुल चला आता है। वास्तव में परमात्मा बाप जब इस सृष्टि पर नई सृष्टि रचने आते हैं तो परंपरा से कुल नहीं चलाते हैं, तो डायरेक्ट ब्रह्मा की संतान बनना पड़े। तो कुल चलाता है, परंतु ब्रह्मा कब था वो पता नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण हुआ जो ब्रह्मा की संतान हो, ये नहीं कहा ब्राह्मणों की संतान हो वो ब्राह्मण। असली ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्मा की संतान हो डायरेक्ट, वो हुए ब्राह्मण। ब्राह्मण बच्चे के अर्थ में एक मात्रा बढ़ जाती है। विष्णु के फॉलोअर वैष्णव, मात्रा बढ़ गई, वी से वै हो गया। शिव के फॉलोअर शैव, एक मात्रा बढ़ गई। दिति की संतान दैत्य, एक मात्रा बढ़ गई। तो एक मात्रा बच्चे के अर्थ में बढ़ जाती है। यहाँ भी ब्रह्मा की संतान माना ब्रह्मा में क्या मात्रा बढ़ गई? ब्राह्मण, एक मात्रा बढ़ गई। तो जो ब्रह्मा की संतान है वो ही ब्राह्मण है। वो तो बाप के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं है। कौन बाप के ऑक्यूपेशन, बाप के धंधे को कौन नहीं जानते हैं? वो तथाकथित ब्राह्मण नहीं जानते हैं। वो समझते हैं कि बाप आता है और ज्ञान सुना करके चला जाता है, ये उसका धंधा हो गया। अरे सिर्फ ज्ञान सुनाना उसका धंधा नहीं है, उसका मुख्य धंधा है पतितों को पावन बनाना। वो तो कोई अभी तक बना नहीं। तो जब पतितों से पावन कोई बना नहीं, कोई छाती ठोक करके कोई ब्राह्मण नहीं कह सकता कि हम पावन हो चुके हैं। तो जब कोई कह नहीं सकता कि हम पतित से पावन हो चुके हैं, हमारे ऊपर दुनिया वालों का कोई संग का रंग नहीं लग सकता, ऐसा कोई कहेगा? अगर ऐसा कोई तैयार हो जाए जिसको दुनिया वालों का कोई संग का रंग न लगे, तो उसको तो दुनिया में भटकने की दरकार ही नहीं रहेगी। वो फिर गंगा में जाकर के स्नान नहीं करेगा। गंगा में जाकर के स्नान कौन करते हैं? चाहे चैतन्य गंगा हो चाहे जल गंगा हो, जो पतित होंगे वो जाकर के वो ज्ञान गंगा में जाकर के स्नान करेंगे, चैतन्य गंगा में पावन बन गया तो उसको जाकर के कहीं भी स्नान करने की दरकार, तीर्थों पर भटकने की दरकार नहीं है। भारत में पहले ब्राह्मण ही होते हैं, बाद में दूसरे दूसरे होते हैं। ब्राह्मणों का है उचित ऊंच कुल, वह ब्राह्मण भी समझते हैं हमारा कुल जरूर ब्रह्मा से ही निकला होगा, निकला होगा पक्का पता नहीं है, समझते हैं कि हमारा कुल जरूर ब्रह्मा से ही निकला होगा। कौन से ब्राह्मण समझते हैं? वो ब्राह्मण भी समझते हैं कि हमारा जरूर कुल ब्रह्मा से ही निकला होगा, यानी अनुमान लगा लिया, परंतु कैसे निकला, कब निकला, ये वर्णन नहीं कर सकते। और तुम तो इस बात का वर्णन कर सकते हो कि हम कैसे प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं। अभी दूसरा पेज, तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को फिर देवता बनना है। क्या देवता किसको बनना है? जो ज्योतिबिंदु आत्माओं को देवता नहीं बनना है, जो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हैं उन ब्राह्मणों को ही ब्राह्मण से देवता बनना है। ब्राह्मण देवों का गायन है, ब्राह्मण देवताओं को पूजा जाता है, तो अगले जन्म की बात नहीं है, इसी जन्म में ब्राह्मण और इसी जन्म में ब्राह्मण को देवता बनना है। ब्राह्मणों को आकर के पढ़ाते हैं, कहते हैं ना त्रिमूर्ति, क्या कहा, ब्राह्मणों को आकर के पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं, त्रिमूर्ति शिव, ये नहीं कहा एक मूर्ति शिव आकर के पढ़ाते हैं, वो तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं, बस ब्रह्म के द्वारा ब्रह्मा, ब्रह्म के द्वारा विष्णु और ब्रह्म के द्वारा शंकर, बाबा मुरली में भी बोलते हैं कि उन झूठे ब्राह्मणों ने तो त्रिमूर्ति का चित्र बनाया है तो उसमें त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, वो कह देते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा की तीन मूर्तियां, वास्तव में त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं है, त्रिमूर्ति शिव है, तीन मूर्तियां शिव है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना रंग है। क्यों? इन्होंने तो होने तथा कथित ब्राह्मणों ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने जो त्रिमूर्ति का चित्र बनाया है उस त्रिमूर्ति के चित्र में ध्यान से देखो, पुराने चित्र में 30x40 इंच के चित्र में तीनों चेहरे ब्रह्मा के दिखा दिए, क्यों? वो समझते हैं ब्रह्मा ही तीनों पार्ट बजाता है, ब्रह्मा की सोली ही ब्रह्मा का पार्ट बजाती, प्यार का, पालना का, और ब्रह्मा की सोली ही विष्णु का पार्ट बजाती, ब्रह्मा की सोली ही शंकर का पार्ट बजाती, लेकिन ऐसा नहीं है। जब त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है तो जरूर तीन मूर्तियां होनी चाहिए अलग अलग, ब्रह्मा द्वारा कार्य अलग होता है संपन्न, विष्णु द्वारा स्वर्गीय संगठन की पालना होती है, और शंकर द्वारा पुरानी जो ब्राह्मणों की शक्ति है रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मणों की, उनका संहार होता है। बाहर की दुनिया के विनाश की बात नहीं है, ऐसे नहीं कि शंकर कोई वो स्थूल एटम बम फुरवाते हैं फिर तो हिंसक हो गया। तो ब्राह्मणों को आकर के पढ़ाते हैं, कहते भी है त्रिमूर्ति, जब त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है तो जरूर शिव की तीन मूर्तियां होंगी ना, इसलिए एक मुरली में बोला ये त्रिमूर्ति का चित्र यथार्थ नहीं है, तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र निकालना चाहिए, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का एक्यूरेट चित्र क्यों नहीं निकाले, क्यों बोला ऐसा, क्योंकि जो त्रिमूर्ति का चित्र है उसमें तीनों चित्र ब्रह्मा के दे दिए हैं, असली चित्र नहीं है, असली चित्र तो अप्रत्यक्ष होना है, वो त्रिमूर्ति हमारे सामने प्रत्यक्ष होगी। बाबा ने बोला जिनका साक्षात्कार करते हैं वो इन आंखों से भी तुम देखोगे, क्यों बोला ऐसा, हाँ हाँ, ब्रह्मा का विष्णु का शंकर का तीनों का साक्षात्कार तो हुआ ना, तो जिनका बंद आंखों से साक्षात्कार हुआ उनको इन आंखों से तुम बच्चे देखेंगे, तो इन आंखों से कैसे देखेंगे, क्या सचिव में जाके देखेंगे, यही इसी सच्ची पर अब वो समय आ गया कि ब्राह्मण बच्चे तीनों रूपों को साकार में इसी सृष्टि पर आकारी स्टेज में रहने वाला ऐसा देखेंगे। तो जब कहते हैं त्रिमूर्ति, अब बाप को त्रिमूर्ति कहना भी राइट नहीं है क्योंकि वो तीन देवताओं को रचते तो है नहीं। क्या कहा? अब माना जिस समय वाणी बोली गई है उस समय की बात है। क्या बोला? अब बाप को त्रिमूर्ति कहना भी राइट नहीं है। क्यों राइट नहीं है? क्योंकि वह तीन देवताओं को रचते तो नहीं, तीन देवताओं को नहीं रचते। ये तीन देवता हैं, रचे जाते हैं क्या? अगर रचते हैं तो विष्णु को कैसे रचते? विष्णु को कैसे रचा? ये तो रंग हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा ही सो विष्णु बनते हैं बाद में, तो विष्णु को कहाँ रचा? ब्रह्मा का पुरुषार्थ पूरा हुआ तो वो स्वतः ही विष्णु बन जाता। फिर शंकर को कहाँ रचते हैं? शंकर को रचते कहाँ हैं? उनकी औलाद कोई नहीं है। कोई शंकर कुमार कुमारी कहलाता है अपने को? शंकर की तो कोई औलाद नहीं। उनकी कोई औलाद होता तो वो भी सृष्टि का विनाश करता, पुरानेपन का विनाश करता। ये धर्म पिताए हैं, वो पुराने का विनाश नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते हैं। विनाश तो सिर्फ एक ही करता है। इसलिए हम बच्चों को भी डायरेक्शन दे दिया है मुरली में बाबा ने कि तुम बच्चों को शंकर को फॉलो नहीं करना है। शंकर का काम शंकर को करने दो, मास्टर शंकर बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। तुमको क्या करना है? तुमको तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना है। क्यों? क्योंकि बाप के टाइटल अलग और देवता बनने वालों के टाइटल अलग। देवताओं के टाइटल क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा, पुरुषोत्तम। ये तुम ब्राह्मण तो देवता बनने वालों के टाइटल है। बाकी परमात्मा बाप अगर ये टाइटल धारण कर ले, सर्वगुण संपन्न बन जाए, तो दुनिया में जो अवगुणहीन है, अवगुण रहते हैं, अवगुणों से भरे पूरे हैं, राक्षसी स्वभाव वाले, उनका विनाश कौन करेगा? उनका पत्ता साफ कौन करेगा? अगर वो संपूर्ण अहिंसक बन जाए, महाकाल का रूप धारण न करे, तो इन हिंसकों का विनाश कौन करेगा? इनका पत्ता साफ कौन करेगा? तो ये टाइटल परमात्मा की नहीं है, परमात्मा के तो टाइटल ही निराले। तो शंकर की तो कोई औलाद नहीं, डिनेस्टी ब्रह्मा से चलती है। तो ऐसे कहें एक ब्रह्मा को रचते हैं, बाकी वो फिर क्या है? उनसे डिनेस्टी तो होती नहीं है। डिनेस्टी तो लक्ष्मी नारायण की चलती है। ब्रह्मा की डिनेस्टी कहीं चलती है क्या? कोई जैन है? नहीं। ब्राह्मणों की भी डिनेस्टी नहीं है, ब्राह्मणों का कुल है। डिनेस्टी तब कहा जाए जब राजा रानी बने, जैसे अंग्रेजों में किंग एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये डायनेस्टी चली। मुगलों की डायनेस्टी चली बाबर से, ऐसे ही लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये डायनेस्टी चलती है, बाकी ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं चलती। डायनेस्टी कब चले ब्राह्मणों की? है जब राजा रानी बने। किसके ऊपर राजा बने? दूसरों के ऊपर ब्राह्मण राजा बनेंगे? उन्होंने कहा तुम हमारे डायरेक्शन पे चलो। अरे हम ब्राह्मण सेवाधारी होते हैं या किसी को डायरेक्शन पर चलाने वाले होते हैं? ब्राह्मण तो सेवाधारी होते हैं, उन्हें तो सेवा करनी है, चाहे कर्मणा सेवा करें, चाहे वाचा करें, चाहे मनसा करें, सेवाधारी को ब्राह्मण कहा जाता है। अगर सेवाधारी नहीं, सिर्फ हुक्म चलाने वाला है, तो वो ब्राह्मण नहीं है। हुक्म चलाने वाला तो ब्राह्मण होता ही नहीं। ब्राह्मण वही होते हैं जो बाप की याद में रहते हैं, ये सिंगल लाख, और डबल लाख कौन सा? सेवा में रहते हैं। सेवाधारी का जिनके अंदर गुण होता है, जो सेवा करने वाला होता है, दास दासी होते हैं घर में, माँ बाप बच्चों के दास दासी होते हैं ना, सेवा करते हैं ना, तो क्या उनके ऊपर घोसा चप्पल चलाते रहते हैं, डायरेक्शन चलाते रहते हैं क्या हर समय? नहीं, प्यार से चलाते हैं। तो दास दासी का कर्म तो बहुत ऊंचा कर्म है। परमात्मा बाप खुद आकर के क्या कहता है? बच्चे आई एम योर ओबीडियंट मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो ब्राह्मण बच्चे क्या किसी ऊपर डायरेक्शन चलाएंगे? नहीं, अपना काम अपने आप करना है। तो राजा ही किसके ऊपर करना है फिर? डायनेस्टी कैसे चलेगी? तो कहते हैं उनका उन तथाकथित ब्राह्मणों का गिरह क्या होती है? वो कहते हैं कि अगर हम राजा ही यहाँ संस्कार धारण नहीं करेंगे हुकुम चलाने के, तो बाहर राजा कैसे करेंगे? अरे यहाँ जितना हुकुम चला लेंगे, यहाँ जितनी राजाई कर लेंगे, मुरली में तो बोला हुआ है राजाई खलास हो जाएगी, वहाँ दास दासी बनेंगे। तो हुकुम चलाने की बात नहीं है, हुकुम चलाना है तो अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर हुकुम चलाओ, अपनी इंद्रियों के ऊपर राजा बनो, अपनी दृष्टि को कंट्रोल करो। ये आंखें बहुत धोखा देने वाली, जब दृष्टि से मिलाई बन जाए तब समझो हम देवता बने, तब कुल चलेगा और कुल के साथ डायनेस्टी भी चलेगी। तो डायनेस्टी तब कहा जाए जब राजा रानी बने, तो दूसरों का राजा नहीं बनना है, राजा अपना अपने ऊपर राजा बनना है, अपनी कर्मेंद्रियों पर राजा बनना है। जैसे सूर्यवंशी डायनेस्टी, जैसे चंद्रवंशी डायनेस्टी, वैसे तुम ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं होती, डायनेस्टी तब होगी जब तुम कंट्रोलर बन जाओ। तुम ब्राह्मणों में राजा तो बनते नहीं क्या? यानी दुनियावी तरीके के राजा तुम ब्राह्मणों में नहीं बनते हैं, हुकुम चलाने वाले कैसे राजा बन सकते हो? है अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने वाले, मन बुद्धि और संस्कार के ऊपर राजाई करने वाले राजा बन सकते हो। तुम भी अभी क्या हो? प्रजा हो। अभी क्या हो? अभी तो इंद्रियां ही तुमको कंट्रोल कर रही है, तो अभी तो तुम प्रजा हो, और अभी प्रजा ही है, प्रजा तुम भी हो और वो कौरव भी प्रजा है। वह जो कहते हैं कौरवों और पांडवों का राज्य था, वो दोनों रंग राज्य न कौरवों का होता है न पांडवों का, राजा ही तो दोनों को नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, उनको राजधानी नहीं कहेंगे। जो राजधानी होती है उसमें राज्य किसका होता है? राजा और रानी का राज्य होता है। तो अभी कोई ब्राह्मणों की दुनिया में राजा रानी है? हैं? कहते हैं दादी है राजा और मनमोहनी दीदी थी रानी, उस समय कहते थे ये राजा रानी, इनकी आत्माओं में राजा रानी के संस्कार बने हुए हैं, वो मुख्य प्रशासिका और वो सह प्रशासिका। अरे ये प्रशासक और प्रशासिका शब्द कहां से आ गए ब्राह्मणों की दुनिया में? ये तो ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। वास्तव में जो लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी है वही डायनेस्टी होगी, वही राजधानी होगी, अभी राजधानी नहीं कहेंगे। ताज तो है नहीं, कौन सा ताज है? वो पवित्रता का ताज ही नहीं है। जो पवित्रता का ताज जिसके आधार पर मनन चिंतन मंथन बुद्धि में चले, अपने अनेक जन्मों को आत्मा बैठे बैठाए देखती रहे कि अमुक युग में हमारा ये अमुक जन्म होगा, अमुक युग में हमारा ये अमुक जन्म विशेष होगा, हम अमुक स्थान विशेष पर पाठ बजाएंगे, जब तक मनन चिंतन मंथन के द्वारा हम ऐसी स्टेज को प्राप्त न कर सके तो ताज कहाँ है? ये तो झूठा ताज धारण कर लिया है। बाबा ने समझाया था पहले डबल सिर ताज भारत में थे और अब तो सिंगल ताज भी नहीं। सिंगल ताज कौन सा होता है? स्थूल ताज। वो तो स्थूल ताज राजा बांधते थे।
अब जब अटल निश्चय हो गया तो मनन चिंतन मंथन करने की दरकार भी नहीं रहती। मनन चिंतन मंथन चलना ही तब है, तब तक है जब तक पार्ट क्लियर नहीं हुआ। अब जब पार्ट आत्मा का क्लियर हो जाता है तो फिर वो अपने स्वरूप में स्थिर होने की स्टेज में होती है, फिर उसको मनन चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं है, तीव्र पुरुषार्थ हो जाता है फिर। तो इस आत्मा का पहले पहले क्या जन्म था सो अभी तुम जानते हो। ये तो इस आत्मा की बात हुई। अब फिर अपने ऊपर भी आओ, अपने ऊपर मानो